Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Manisha Panchakam, presented by Swami Sri Avadesh Chaitanya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
जाने के बाद यमराज के द्वार पर तीन रात्रि तक रुकते हैं। यमराज महाराज कहीं गए थे, त्रिरात्रम स्थित्वा जब यमराज आए तो देखा कि ब्राह्मण बालक तीन रात्रि जो है अनाहार रुके हैं, तो यमराज आकर के प्रणाम किया, पाद्य अर्घ से स्वागत किए कि आप ब्राह्मण देव है, और फिर यमराज उनसे तीन वर मांगने को कहते। तीन वर मांगने को कहा तो नचिकेता प्रथम वर क्या मांगा, बहुत एकदम शास्त्रीय दृष्टि, बहुत बुद्धि को खुल करके ओपन माइंड से अगर शास्त्र को देखे नारायण, व्यक्ति जीवन व्यवहार जीवन क्या है, हम व्यवहार कुशल कितने हैं, शास्त्र से सीखना है। वहां जाकर भी नचिकेता प्रथम बार क्या मांगते हैं कि मैं जब आया मेरे पिता गुस्से से मुझे यमराज को देता हूं ऐसा कहा तो वो जरूर खिन्न दुखी होंगे, प्रथम बार तो आप वो दीजिए कि मेरे पिता जो है अपने दुख से उठ सके, उनके हृदय जो है प्रसन्नता को प्राप्त करे। यह है पिता पुत्र के रिलेशन। ऐसा नहीं कि पिताजी ने हमें त्याग दिया, पिताजी ने हमें ऐसा सजा दिया तो हम हमेशा उनके विरुद्ध उनके अकल्याण ही प्रार्थना करें चाहे। वहां भी वो पुत्र होने के गौरव, और वहां भी वो प्रार्थना करते हैं कि पिता के मन जो है प्रसन्न हो, ये पर आप दीजिए। तथास्तु, मिल गया। द्वितीयम वरम वृणिष्व, द्वितीय वर मांगो। कहते देखिए द्वितीय वर तो यह है कि मैं यमलोक आया हूं हमेशा के लिए नहीं, और मैं पुनः वापस जाना चाहता हूं, और मैं जब जाऊं तो सब लोग पहचाने, ऐसा नहीं कि भूत आए करके चिल्लाए भगाए, कितना विचार देखिए, और वो भी मंजूर किया। तथास्तु। तृतीयम वृणस्व, तृतीय बार मांगो। तृतीय बार में जो अंतिम निष्कर्ष है, ये यम प्रेते पिचिकित्से नायम अन्य, कोई कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा है, अस्तित्व है, और कोई कहता है मृत्यु के बाद आत्मा अस्तित्व नहीं है। तो हे यमराज, मुझे ऐसा लगता है कि इसके ज्ञाता आप सबसे अच्छे हैं, क्योंकि आप मृत्यु के भाई स्पेशलाइजेशन है उसमें मृत्यु, इसीलिए उनके पास जाकर के भाई फिजिक्स के केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर है वो उस पर स्पेशलाइज, उससे प्रश्न करो। अब यमराज के पास जाकर के आप कुछ और व्यवहार की बात पूछो, उससे अच्छा है कि आत्मा परमात्मा अस्तित्व के बारे में आपका क्या निश्चय है, और मुझे वो निश्चय चाहिए। यमराज ने देखा कि ये क्या है, और उनको कितने सारे प्रलोभन देते, और केवल उतना ही नहीं, उपनिषद के भाष्यों को जब देखते हैं तो ग्रंथकार लिखते हैं, भगवत पाद आचार्य शंकर लिखते हैं कि उनको ऐसे दिखा रहे, जैसे कपड़े की दुकान में आप कपड़े खरीदने जाओ तो आपको चॉइस करने के लिए दिखाते हैं खोल खोल के, उसी प्रकार यमराज जो है उनको दिखा रहे कि ये देखो ये लोक ये भोग, ये देखो ये लोक और ये भोग, तुम इसमें से किसी को भी चाहो मैं देने को तैयार हूं, परंतु तो आत्मा के बारे में न पूछो। यमराज इनको इतने देते हुए देख करके नचिकेता सब के उत्तर दिया कि ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हम होते तो शायद किसी एक को लेकर के वापस आते कि चलो कुछ तो मिला, कम से कम बढ़िया जगह पर एक मकान बांगलो मिल जाए, गाड़ी मिल, यही सब मांग करते, परंतु नारायण शास्त्र काठक ऋषि वो दृष्टि देना चाहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है कि जिसको प्राप्त करके आप ऐसा निश्चय कर सकते कि बहुत मिला, बहुत पाया। आप ऐसा निश्चय नहीं कर सकते हैं कि बस जीवन में ये मिला तो जीवन में और कोई संकट आने वाला नहीं है। आपके ऐसे चेतना नहीं बन सकती है कि बस इसको मिलने के बाद घोर तर संकट उपस्थित हो तो मैं विचलित होने वाला नहीं हूं। यमराज ने कहा कि देखो आयु ले लो, जितना चाहो आयु देता हूं। नचिकेता ने कहा कि वाह, आप आयु देना चाहते हैं, परंतु हे यमराज, अति दीर्घ जीविते को रमेत। अति दीर्घ जीवन पाकर के किसने सुख पाया, आनंद अनुभव किया? मो प्रसिद्ध, क्या प्रश्न है कि मेरे ऊपर आप प्रसन्न हुए? ये जो आप दे रहे हैं ये प्रसन्नता का प्रतीक नहीं है, प्रलोभन है। मो प्रसिद्ध, मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो करके यही हम प्रेते प्रचिकित्से नायम अस्तित्व के। जो आत्मा है, कोई कहते हैं मृत्यु के बाद वो नहीं रहता है, आत्मा नहीं है, कोई कहता है, तो इसके बारे में आपका क्या निश्चय है? भगवत भक्तजन, ये जो एक लक्ष्य आत्मा को जानने के लिए जो दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, ये है नचिकेता जीवन के लक्ष्य। और उस आत्मा को जाने बिना आप भौतिक कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, वो आपको सुखी नहीं कर सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण बारंबार कह रहे, यं लब्ध्वा चापरम लाभम अधिकम न मन्यते। जीवन में तुम अगर धन जन कुछ भी कमाओ, अगर कमाने के बाद ऐसा लगे कि अरे इससे भी वो जो है अमुक वस्तु श्रेष्ठ है, वो मुझे चाहिए, तब तो जीवन में, जीवन के शुरुआत में जो जीवन का लक्ष्य तुमने रखा था वो तुमने गलत चयन किया। अगर संकट की घड़ी में वो लक्ष्य, वो निश्चय अगर तुम्हें हेल्प नहीं कर पाया, तब समझना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य वो नहीं है। इसलिए भगवत भक्तजन, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस संसार में संकट से कौन मुझे बचाने वाला है? भगवान नहीं, एकदम भगवान बचाने वाला नहीं है। आप अगर मान रहे हैं कि भगवान बचाने वाला है तो नहीं है, मैं आज कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपका निश्चय के ऊपर उनका आगमन है। आपने कभी निश्चय किया कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान है तो भगवान क्यों आपकी रक्षा करेंगे? हमने हमारा जीवन का लक्ष्य निश्चय बना के रखा, धन जन मान प्रतिष्ठा, और वो हमें रक्षा करने वाले हैं? हमारी भाव के ऊपर, हमारी भावनाओं के ऊपर, हमारे निश्चय के ऊपर वो सक्रिय होते हैं। अगर हमने निश्चय किया कि वो हमारे लिए लक्ष्य है तो महाराज वो सक्रिय होते हैं। अगर कोई कहता है कि भगवान को मानता नहीं हो तो भगवान खुश होते हैं कि चलो कम से कम वो अपना काम तो खुद करने के लिए तैयार हो गए। ऐसा प्यारे बहुत होते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता तो भगवान से चलो बच गया, तेरी बुद्धि जो है अच्छी हो गई, अब तू खुद अपने पैरों में खड़े होकर चल सकता है। अगर कोई कहता है भगवान मेरे प्रिय है तो वो आकर के कंधे में हाथ लगाता है कि चलो तुम्हारा काम में मैं हाथ बटाता हूं। कोई कहते भगवान मेरे सखा है तो वो हैंडशेक करने के लिए आते हैं, आओ हाथ मिलाओ। ऐसा नहीं कि भगवान फिरते रहते नेताओं की तरह कि वोट के पहले सबके द्वार द्वार में जाकर के, ऐसा नहीं महाराज। उनको कोई पड़ी नहीं है, कमी नहीं है, वो तो हम निश्चय करते। हमारा निश्चय क्या है? अगर हमने निश्चय किया कि वो मेरे प्रभु है तो हमारी प्रत्येक सेवा वो ग्रहण करते हैं। अगर हमने निश्चय किया कि वो मेरे स्वामी है तो वो हमारे प्रत्येक विपत्ति में रक्षा करते हैं। अगर हमने निश्चय किया वो मेरे सखा है तो प्रत्येक परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल में तो वो होते ही हैं, प्रतिकूल में, विषम परिस्थिति में वो आते हैं सखा के रूप में। जब हम स्वामी के रूप में मानते कि प्रभु तुम स्वामी हो, तुम प्रभु हो, तो वो पूर्ण जीवन के दायित्व को वो ले लेते हैं। इसलिए भगवान रक्षा किनको करते हैं? कभी हमने माना नहीं, कभी हमने निश्चय नहीं किया और वो हमें रक्षा करेंगे, ऐसा अगर आप मान रखें तो भूल है, गलती है। क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारी मन, हमारे व्यक्तित्व तो किसी और पर निश्चय है और हम जो है ऐसा विचार करके रखे हैं कि भगवान हमें रक्षा करेंगे। अरे पहले आप पकड़ो, फिर भगवान पकड़ने वाले हैं। पहले आपका निश्चय हो जाए, फिर भगवान निश्चिंत करने वाले हैं। इसलिए भगवत भक्तजन इस मामले में हम बहुत दूर हो जाते हैं। विपत्ति आपत्ति में हम उनको याद करते हैं, परंतु हमारा जो स्थिर निश्चय होना था, जीवन का जो ध्येय होना था, जीवन का जो लक्ष्य उनको मानना था, वो हमने बनाया मनाया कि नहीं? अगर बनाया है, अगर माना है, अगर निश्चय किया है, ते श्यामणी श्याम, वो मेरे मनीषा है, वो मेरे निश्चय। इसलिए भगवत भक्तजन जीवन में क्या निश्चय करना है, जीवन में क्या प्राप्त करना है? धन हमने बहुत कमाया, जन हमने जनों के लिए किया, सबके लिए किया, परंतु आप अपने लिए क्या किए? आप अपने लिए क्या किए? अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक ही कर सकते हैं, वो है निश्चय। और वो निश्चय अगर कर सकते हैं जीवन में, वो बुद्धि अगर आपकी स्थिर हो गई है हमारा, तो भगवान स्वयं कह रहे एतत बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्यश्च भारत। इसीलिए कृतकृत्यता कब आ सकती है, बुद्धि की शुद्धि कब हो सकती है, बुद्धि की स्थिरता कब आ सकती है, बुद्धि की निश्चय कब कर सकते हैं? जब व्यक्ति वो जो श्रवण जन्य श्रवण के द्वारा उस उत्कृष्ट उस श्रेष्ठता का बोध कर सकते हैं। और तभी वही प्रार्थना है, मैं उस दिन भी कह रहा था, प्रार्थना मतलब ही है परम जो श्रेष्ठ है, प्रकृष्ट और थ, प्रकृष्ट जो निश्चय है उसको वो स्थिर कर लेता है। तो श्रेष्ठ कौन है हमारे जीवन में? तो जो श्रेष्ठ है वो हमारा लक्ष्य हो, ये जीवन का एकमात्र, शास्त्र का एकमात्र उपदेश है। इसलिए आप किसी भी ग्रंथ को अध्ययन कीजिए, पढ़े, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, गीता जी हो, कुछ भी हो, एक बात पर बारंबार वो दिशा निर्देश करते हैं कि भाई कुछ भी करो, चाहे सुनो, चाहे पढ़ो, चाहे देखो, चाहे सत्संग करो, एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि जीवन का ध्येय, जीवन का निश्चय हुआ है अथवा नहीं। अगर अभी तक भी नहीं हुआ है तो समझना चाहिए अभी वो परम कर्तव्य है। भाई संसार के अनेक कर्तव्य हमारे जीवन में है और हम कितना भी निश्चय करें कि ये कर्तव्य प्रायोरिटी हम देते हैं कि ये कर्तव्य प्रथम है, इसको हम कर ले फिर तो हम भगवान को ही प्राप्त करने में लग जाएंगे, परंतु भगवत भक्तजन प्रायोरिटी आप जिसको दे रहे हैं वो प्रायोरिटी के लायक है अथवा नहीं। कर्तव्यतैव दुःखानां परमं दुःखम् उच्यते, शास्त्रकार निश्चय करके बतलाते हैं कि जितने जो जो आप कर्तव्य माने कि ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, तो कह रहे हैं कर्तव्यतैव, जितने भी दुख है वो सबसे बड़ा दुख जो है ये कर्तव्यता रूप दुख। तो परम कर्तव्य क्या है? संसार में जिसको आप कर्तव्य मान रहे वो कर्तव्य अगर आप न भी करें नारायण, तो उस कर्तव्य को कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से पूर्ण हो सकता है। भगवान राम नेक्स्ट डे दूसरे दिन बन गया तो अयोध्या एकदम उजड़ गया था, चला नहीं। तो हम किस खेत के क्या है ना? कोई नहीं महाराज। इसलिए अगर मैं सोचता हूं कि मैं बिना तो इस परिवार की कोई रक्षा करने वाला नहीं है, मैं अगर न कमाऊं तो इसको खिलाने वाला कोई नहीं है, अरे तुम कौन होते हो? अगर वो परमात्मा तुम्हारे माध्यम से न दे तो तुम्हारे कोई औकात नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई संभावना तुम्हारे में नहीं है। तो जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो परम कर्तव्य और कर्तव्य, ये एक डिमार्क शास्त्रकारों ने किया कि परम कर्तव्य वो है जो मैं ना करूं तो वो रह जाता है, वो होता नहीं है, वो है परम कर्तव्य। और परम कर्तव्य वो है कि व्यक्ति का निश्चय, समग्र जीवन का निश्चय क्या है, जैसे आचार्य शंकर तेषां मनीषां मम करके निश्चय किया, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का निश्चय क्या है। अगर देव परमात्मा आत्मा निश्चय है तो समझना चाहिए वो आत्मा, चाहे वो सगुण साकार हो चाहे वो निर्गुण निराकार हो, हमारे प्रत्येक दुख दर्द कष्ट वो दूर करने के लिए तत्पर है। और ये निश्चय व्यक्ति को, देखिए भक्त कौन है जो भजन करते हैं, भक्त कौन है जो स्तुति करते हैं, हाँ स्तुति जो करते हैं, अगर हमारे मन में ऐसा निश्चय हो जाए कि इस अमुक व्यक्ति जो है हमारे इस काम को कर सकते हैं महाराज, तो हम कितने बार दौड़ते हैं। अगर ऐसा लग जाए कि ये नहीं करेगा तो वो होने वाला नहीं है, तो हम जी जान लड़ा करके उनको फुसला करके गिफ्ट दे करके तरह तरह की हम तरकीब अपनाते हैं। तो ईश्वर के बारे में ऐसा बोध है, ऐसा निश्चय है कि अगर वो ना करे तो नहीं होने वाला है, तब तो फिर हम हर घड़ी हर पल उनको याद करते स्मरण करते, कहीं ना कहीं बुद्धि में वो बात बैठी है कि नहीं वो बिना भी वो शायद क्लियर भी नहीं है कि हम भी कर सकते, हमारी पुरुषार्थ भी संभव है, हमारे स्वजन भी कर सकते, हमारे धन भी हमें रक्षा कर सकते हैं। नारायण जिस दिन वो बोध हो जाए कि नहीं एकमात्र तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उस दिन हमारा निश्चय अगर उस दिन हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में बाकी जीवन जो है बिल्कुल सहज सरल आनंदमय हो जाता है। स्वानुभव देखिए, जब किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बॉस गया है आपको बता के गया कि भाई ये डिपार्टमेंट के दायित्व जो है अब तुम्हारे ऊपर रखा, मैं जा रहा हूं 7 दिन के लिए, कुछ भी होगा रिस्पॉन्सिबल तुम, कितना टेंशन होता है। हम लोग आश्रम में देखे, आश्रम के महंत जी बाहर गए कि महाराज थोड़ा 7 दिन देख लेना। आप 7 दिन में एक बार तो टेलीफोन बिल आता है, एक बार इलेक्ट्रिक का बिल आता है, कोई पोस्ट में आकर खड़खड़ाता है एकदम, कोई भोजन बनाने वाला आके महाराज जी हल्दी नहीं है, अरे राम राम, पता ही नहीं लगता है कैसे 7 दिन बीते। 5 दिन बीता, अचानक फोन आया कोठारी का, भाई मैं आ रहा हूं, अभी आया नहीं, बड़ा निश्चिंत हो गया, वो आ रहे अब मुझे कोई टेंशन नहीं, प्रैक्टिकल है बस, वो आ रहा है बस निश्चिंत, अब कितना भी कोई भी झंझट आए तो वो संभालने वाला है। तो बस व्यक्ति के जीवन में हमारे अध्यात्म जीवन में उतनी जरूरत है कि वो है, ऐसा निश्चय हो जाए तो हमारे जीवन में जो भी संकट है जो भी दुख है जो भी कष्ट है वो फिर उसके लिए हमें तड़पना नहीं पड़ेगा, वो करे लेंगे। इसीलिए भगवत भक्तजन जीवन साध्य साधनात्मक शास्त्र के उपदेश है और जीवन का लक्ष्य जो है वो निश्चय करना है। और जीवन का लक्ष्य जिस दिन हम निश्चय कर लेंगे उस दिन वही हमारे जीवन का एक निश्चय निश्चिंत की ओर हमें ले जा सकता है। भगवान भगवत पादाचार्य शंकर उस निश्चय को प्राप्त किया और इसीलिए बारंबार कहते ब्रह्म ही वाहम। जो पहले साध्य के रूप में हमने जिनको चयन किया कि वो है, वो मेरे प्रभु है, वो मेरे स्वामी है, अब उन्होंने साधना के द्वारा उसको प्राप्त करके अनुभव किया कि वही मैं हूं, क्योंकि वही सत्ता इस शरीर के अंदर है, तब जाकर के वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को अनुभव कर रहे हैं और वही है, तभी जाकर के ये मैं बोलने वाला भी वही है। ऐसा निश्चय जीवन में प्राप्त करें, भगवान के चरणों में ही प्रार्थना है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।